अगले दिन दोपहर का वक्त था। अंतरा अपने कमरे में उल्टी पड़ी फोन चला रही थी, तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अंतरा, मैं अंदर आ जाऊं? आवाज़ अनवे की थी। वो सुबह अपने काम से निकला था और कुछ आधे घंटे पहले ही लौटा था। अंतरा आवाज़ से उसे पहचान चुकी थी। उसने ऐसे ही पड़े हुए फोन चलाते हुए बेफिक्री से जवाब दिया, आ जाओ भाई, ये कोई प्रधानमंत्री का कमरा नहीं कि अंदर आने से पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़े। आदत अनुसार टेढ़ा ही जवाब दिया था उसने, जैसे खीजी हुई हो। अन्वय को अब आदत हो चुकी थी, सो उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और मुस्कुराते हुए वो अंदर चला आया। मिस अंतरा, हम आपके शहर आए हैं, कहीं घुमाएंगी घुमाएंगी नहीं आप हमें? बड़ी ही तहजीब और अदब के साथ अन्वय ने अपनी इच्छा जाहिर की। वहीं उसकी बात सुनकर अंतरा ने सर घुमाकर तीखी नजरों से उसे घूरा और तिरकते हुए बोली, खैर से तुम्हारे दोनों पैर सही सलामत हैं, 11 नंबर की बस पकड़ो और निकल लो शहर पर। वहां उसका हमेशा वाला तीखा लापरवाही भरा अंदाज देखकर अन्वय दिलकशी से मुस्कुरा उठा, पर मुझे तो ये शहर तुम्हारे साथ देखना है। हम तो हजार दफा कानपुर घूम चुके हैं, आपको घूमने का शौक चढ़ाए तो अकेले घूमिए। अब भी उसने सिरे से उसकी इच्छा को ठुकरा दिया। अन्वय के मुस्कुराते लब सिमटे और चेहरे पर नाराजगी के भाव उभर आए। बड़ी नाशुक्री हो तुम, जब तुम दिल्ली आई थी तो मैंने तुम्हें अपना काम धंधा सब छोड़कर पूरी दिल्ली घुमाया था, और जब मैं तुम्हारे शहर घूमने की बात कर रही हूँ तो सीधे से मुकर रही हो। अंतरा, जो अब तक अपने फ़ोन में गिटर बिटर करते हुए ही उससे बात कर रही थी, फ़ोन साइड में रखते हुए उठकर बैठ गई और गहरी निगाहों से उसे देखते हुए अपनी भौहों को सिकोड़ लिया। तुम्हें बड़ी दिलचस्पी हो रही है हमारे शहर में? अन्वय ने उसकी निगाहों से निगाहें मिलाई और भीनी सी मुस्कान लबों पर बिखेर ली। दिलचस्पी मुझे इस शहर में नहीं, यहाँ रहने वाली एक लड़की में है, जिसके तीखे तेवरों का मैं कायल हूँ और जिसकी कटार सी तेज़ निगाहों ने मेरे दिल को घायल कर दिया है। दिल के जज्बात आज लबों और आंखों से जाहिर हो रहे थे। अंतरा पहले तो उसकी उन जज्बात छलकाती आंखों में खोसी गई, पर उसने तुरंत ही खुद को संभाला और झुंझलाते हुए उस पर बरस पड़ी, हो गई बकवास या कुछ और भी बाकी है? अंतरा की ये बात सुनकर अन्वय के चेहरे के भाव बदल गए। तुम्हें मेरे जज्बात, मेरे एहसास बकवास लगते हैं? इतने वक्त मेरे साथ रहकर भी तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं तुम्हें लेकर क्या फील करता हूँ? तुम मेरी जिंदगी में क्या मायने रखने लगी हो? या मेरी फीलिंग्स की, मेरी मोहब्बत की तुम्हारी नज़रों में कोई अहमियत ही नहीं, इसीलिए सब जानकर भी अनजान बन रही हो? इस वक्त अन्वय अपने नेचर के उलट बेहद गंभीर लग रहा था और नाराजगी भरी निगाहें अंतरा पर टिकी थीं। इस तरह अचानक उसने अपनी फीलिंग जाहिर की, अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि पन भर को अंतरा निःशब्द सी उसे तकती ही रह गई। सीने में मौजूद दिल में कुछ हलचल सी हुई, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और भावहीन चेहरे के साथ गंभीरता से बोली, देखो, मुझे नहीं पता कि तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे लेकर क्या फील करते हो, इन बातों में कितनी सच्चाई है, और ना ही मुझे कुछ भी जानने में कोई दिलचस्पी है। मैंने तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझा है, इससे आगे ना कुछ था, ना है और ना ही कभी होगा। इसीलिए एक दोस्त होने के नाते आज मैं तुम्हें साफ शब्दों में समझा रही हूँ कि अगर तुम्हारे मन में मुझे लेकर ऐसा वैसा कोई भी ख्याल पनप रहा है या पनपने के आसार हैं, तो अभी से अपने दिल को संभाल लो, क्योंकि मेरे लिए तुम बस मेरी जिज्जी के देवर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और हमेशा वही रहोगे। इससे आगे हमारा रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अंतरा जैसे ही चुप हुई, अन्वय ने गंभीर निगाहों से उसे देखते हुए सख्ती से सवाल किया, क्यों नहीं हो सकता? ये तो कहना मत कि तुम मुझे लेकर कुछ फील नहीं करती, क्योंकि ये मैं भी जानता हूँ और तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे लिए मैं एक दोस्त से कहीं बढ़कर हूँ, और जो एहसास मेरे दिल में तुम्हारे लिए है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में भी है। इसीलिए तुम्हें मेरा मेरी फीमेल फ्रेंड्स के साथ होना पसंद नहीं आता था, और जब मैं उनसे बात करता तो तुम चिढ़ जाती थी, इसीलिए झूठ बोलकर मुझे बहलाने की कोशिश करने की सोचना भी मत। अंतरा पल भर को चुप्पी साध गई, फिर उसने गहरी सांस अपने सिकुड़ता फेफड़ों में भरी और बिना किसी भाव के बोली, हाँ, तुम मेरे लिए एक दोस्त से बढ़कर हो, पर उसके बावजूद हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। हमारा एक साथ होना मुमकिन नहीं है। दोस्ती से बढ़कर हमारे बीच और कोई रिश्ता नहीं हो सकता, और उसकी एकमात्र वजह तुम्हारी वो हिटलर माँ है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और उन्हें भी नफरत है मुझसे। अगर माँ हिटलर है तो तुम भी चंगेज़ खान से कम नहीं। तुम उनकी सारी हिटलरगिरी निकालकर उन्हें सही लाइन पर ला सकती हो, और उन्हें तुम पसंद नहीं तो क्या, मुझे तो पसंद हो। तुम्हें रिश्ता मुझसे जोड़ना है, ज़िंदगी मेरे साथ बितानी है। जब मैं तुम्हें अपनी लाइफ में शामिल करने को तैयार हूँ तो तुम्हें इनकार क्यों है? शादी दो लोगों को नहीं, दो परिवारों को जोड़ती है। तुम्हारी माँ मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगी, और उनकी मर्जी के खिलाफ उस घर में और तुम्हारी जिंदगी में शामिल होकर मैं अपनी जिज्जी के लिए परेशानियाँ नहीं बढ़ाना चाहती। जिस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं, उसका शुरू ना होना ही बेहतर है। नहीं बढ़ेगी भाभी की परेशानी, इनफैक्ट तुम्हारे उस घर में आने से जो बिगड़ा है वो सही हो जाएगा। मेरी हिटलर मम्मी, जो भाभी की शराफत का फायदा उठाकर उनकी लाइफ में मुश्किलें खड़ी करती रहती है, तुम उन्हें सबक सिखाकर सही रास्ते पर ला सकती है। अगर हमारा रिश्ता जुड़ता है और तुम हमारे परिवार में शामिल हो जाती हो तो मेरी माँ का सामना तुमसे होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ही उन्हें उनकी गलतियों का एहसास दिलाकर उन्हें सुधार दोगी।
मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हारी माँ है, गलत है या सही उन्हें सुधारना तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का काम है, मेरा नहीं। फिर मैं क्यों जानकर अपनी जिंदगी नर्क बनाऊं, तुम्हारे सर की मुसीबत अपने सर पर लूं? क्योंकि आना तो तुम्हें उसी घर में है मेरी पत्नी बनकर, और सामना तुम्हारा उसी हिटलर सास से होगा, अन्वय ने दृढ़ विश्वास से कहा। और उसकी बात सुनकर अंतरा के भी तेवर बिगड़ गए। देखते रहो सपने, उसमें टैक्स थोड़े ही लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए अब अपनी तशरीफ उठाओ और मेरे कमरे से बाहर को प्रस्थान करो, क्योंकि अब तुम्हारी और बकवास नहीं सुन सकती मैं। जा रहा हूँ, पर याद रखना, कितना ही इनकार करो पर शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी। एक बार फिर उसने पूरे विश्वास से ये बात कही और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही अंतरा के चेहरे के भाव बिगड़ गए।